Nobel laureate Elie Wiesel was in the hospital recovering from
Nobel laureate Elie Wiesel अस्पताल में open heart चिकित्सा से उभर रहे थे जब उन्हें उनका 5 वर्षीय पोता मिलने आया। जैसे ही छोटे से लड़के ने उनकी आंखों में देखा, उसे उनका दर्द दिखा। दादाजी, उसने पूछा, यदि मैं आपको अधिक प्रेम करूंगा तो क्या आपको कम दर्द होगा? आज मैं उसी समान प्रश्न हम सबसे करता हूं। यदि हम उद्धारकर्ता से अधिक प्रेम करेंगे, क्या हम तक कम भुगतेंगे? जब उद्धारकर्ता ने अपने चेलों को अपना अनुसरण करने को कहा, वह मूसा के नियम को मान रहे थे, जिसमें आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत शामिल था। परंतु उद्धारकर्ता उस नियम को अपने बलिदान से पूर्ण करने के लिए आए। उन्होंने एक नया सिद्धांत सिखाया, परंतु मैं ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। चेलों को सिखाया गया कि वह प्राकृतिक मनुष्य को अपने मार्ग से उद्धारकर्ता के प्रेम और देखरेख के मार्ग की ओर मुड़ना है। प्रतिशोध को क्षमा में बदलने से और विवाद को करुणा और दया द्वारा एक लोगों से सहभागी होने में संकोच करते थे। तब उद्धारकर्ता ने धैर्य से सिखाया, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया, या जैसा भविष्यवक्ता ने मॉर्मन की पुस्तक में विवरण दिया, जब तुम अपने भाइयों की सेवा में हो, तब तुम केवल अपने परमेश्वर की सेवा में हो।
When you're in the service of your fellow beings, you're only in the service of your God.
As the Savior's Latter-day Disciples, उद्धारकर्ता के अंतिम दिनों के प्रेरित होने से हम उनमें परमेश्वर के बच्चों को प्रेम और उनकी सेवा द्वारा आते हैं। जैसे कि हम करते हैं, हम आपत्ति, कठिनाइयां और शरीर की पीड़ा को ना दूर कर सके, परंतु हम आत्मिक और तौर से कम कष्ट पाएंगे। अपने संघर्ष में भी हम आनंद और शांति को अनुभव करेंगे। हमारा मसीह प्रेम और सेवा सहज रूप से घर में शुरू होती है। माता पिता, आपको अपने बच्चों और युवा के लिए स्नेही अध्यापक और प्रचारक बुलाया गया है। वह आपके अनुसंधानता हैं। आप उत्तरदायित्व रखते हैं उनको परिवर्तित करने का। सच्चाई में हम सब परिवर्तित होने को खोज रहे थे, जिसका अर्थ है उद्धारकर्ता के प्रेम से भर जाना। यीशु मसीह के अनुयायी होने से उनका प्रेम हमें इस नस्वर सफर में एक दूसरे और सहारा बनने के लिए प्रेरित करता है। हम अकेले नहीं कर सकते। आपने मुझे पहले यह कहते हुए कहावत बांटते सुना होगा, आप मुझे उठाएं, मैं आपको उठाऊंगा, और हम उन्नति करेंगे। प्रेरित होने से ऐसा हम तब करते हैं जब हम बपतिस्म लेते हैं, अपनी इच्छा दिखाते हैं, एक दूसरे का बोझ उठाते हैं ताकि वे हल्का हो, एक दूसरे को सिद्धांत के राज्य के विषय में सिखाना ही एक दूसरे के लिए प्रेम और सेवा है। माता पिता और दादा दादी, हम संसार की व्यवस्था से दुखी होते हैं कि स्कूल नैतिक चरित्र नहीं सिखा रहे, परंतु बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। हम ऐसे श्रेणियों को अपने परिवार में सिखाने का लाभ ले सकते हैं। अभी इन्हें खिसकने ना दें। जब भी सुसमाचार के बारे में आपको आपके विचार और जीवन की शिक्षाएं बांटने का अवसर प्राप्त हो, सब कुछ करना रोक कर अपने बच्चों और पोतों के साथ बैठ और बातें करें। हमें यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम व्यवसायिक सुसमाचार के प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है। कोई प्रशिक्षण कक्षा या नियम पुस्तिका निजी धर्म शास्त्र को पढ़ने, प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा के निर्देश को खोजने के जितना ही मददगार है। पवित्र आत्मा आपको मार्ग पर ले जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। माता पिता की बुलावट में आपको और अपने बच्चों को सही मार्ग पर सिखाने की भेंट शामिल है। याद रखें, परमेश्वर का प्रेम हमें धार्मिकता की शक्ति से प्रभावित करना है। हम उन्हें प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे पहले प्रेम किया। युवा, आप हमारे सबसे प्रभावशाली सुसमाचार के शिक्षक हैं। आप गिरजा सीखने के लिए आते हैं ताकि आप घर जाकर अपने परिवार, पड़ोसी और मित्रों को सिखा सकें। डरो मत, गवाही देने के लिए विश्वास करें कि जो आप जानते हैं वह सच है। सोचें कि पूरे समय के प्रचारक बढ़ते हैं क्योंकि वे विश्वसनीय रूप से एक प्रतिष्ठित जीवन जीते हैं। अपने समय और गुण का इस्तेमाल करके और अपनी गवाहियां द्वारा दूसरों की सेवा और उन्हें आशीषित करते हैं करके, जैसे कि आप अपनी सुसमाचार की गवाही को बांटते हैं, आपका विश्वास पनपता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। हमारी कुछ सबसे असरदार मसीह सेवा का आयोजन परिवार में धर्मशास्त्र पढ़कर, पारिवारिक प्रार्थना और परिवार परिषद की सभा द्वारा की जाती है। 100 वर्षों से अधिक गिरजा के अध्यक्षों ने हमें बिना रुकावट के हर हफ्ते निर्धारित समय रखने के लिए कहा है, परंतु हम में से कुछ उन आशीषों को खो रहे हैं। पारिवारिक घरेलू संध्या माता या पिता के भाषण नहीं है, यह हमारा पारिवारिक समय सरल आत्मिक विचारों और अनुभवों को बांटने का है, अपने बच्चों को देखभाल और बांटना सिखाने में मदद करना है, एक साथ आनंद मनाना है, एक साथ गवाही देना है, बढ़ना और उन्नति करना है। हर हफ्ते पारिवारिक घरेलू संध्या और आयोजन करके हमारा एक दूसरे के लिए प्रेम मजबूत होगा और हम कम दुख भोगेंगे। हम याद रखें, सबसे आवश्यक कार्य हम अपने परिवार में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा करते हैं। जब भी हम अपनी आवाज को क्रोध से उठाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे और हमारे परिवार का साथ छोड़ देती है। जब हम प्रेम के से बोलते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ रह सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बच्चों और पोता पोतियों को हमारे प्रेम, हमारा उन्हें समय समर्पण करने से मापना चाहिए। सबसे ऊपर अपना धैर्य ना खोए और कभी हार ना माने। धर्मशास्त्र हमें बताता है कि जब कुछ स्वर्गीय पिता के आत्मिक बच्चों ने उनकी योजना का अनुसरण ना करने का चुनाव किया, स्वर्ग भी रोया। कुछ माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को प्रेम किया और सिखाया है, वे भी रोते हैं जब उन्हें बच्चों की योजना का अनुसरण करने को नहीं चुनते। माता पिता क्या कर सकते हैं? हम दूसरों के चुनाव को प्रार्थना से दूर नहीं कर सकते। याद करें, खर्चीले पुत्र के पिता को, जिन्होंने धैर्य से अपने पुत्र का इंतजार किया। अपने आप आने का हर समय उसी राह देखना, जबकि वह अपनी राह से काफी दूर था। हम मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि कब बोलना और क्या बोलना है। याद करें, हमारे बच्चे और परिवार इस सदस्यों के ने उद्धारकर्ता का अनुसरण करना इस जीवन के पहले ही चुन लिया था। कभी कभी केवल उनके अपने जीवन के अनुभवों से पवित्र भावनाएं जागृत होती हैं। अंत में प्रभु को प्रेम करने और उनको अनुयायी बनाने का चुनाव अपना होना चाहिए। एक और विशेष तरीके से चेले अपना प्रेम उद्धारकर्ता की ओर दिखाते हैं। आज मैं उन सबको श्रद्धांजलि देता हूं जो प्रभु की सेवा देखरेख वाले बन कर देते हैं। प्रभु आपको कितना प्रेम करता है, अपनी शांति में आघोषित सेवा आप उसका अनुसरण कर रहे हैं जिसने आपसे वादा किया है। इस दशा तेरा पिता जो गुप्त देखता है तुझे प्रफुल्लित देगा। मैं अपने पड़ोसी के बारे में सोचता हूँ जिनकी पत्नी अल्जेहर मेयर की बीमारी से पीड़ित थी। हर परिवार वह गिरजा की सभा के लिए उनके कपड़े पहनाने में, बाल बनाने में, मेकअप लगाने में और उनके कान में कुंडल पहनाने में मदद करते थे। ऐसी सेवा प्रदान करने के लिए वह वार्ड में हर पुरुष और स्त्री के लिए उदाहरण थे। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, मैं बस अपने पति को फिर से देखना चाहती हूँ और उनके साथ रहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, ओह अच्छा। मैं सेवा के बारे में अपने जीवन के विशिष्ट देखरेख करने वाले को बिना स्वीकार नहीं बोल सकता। मेरे लिए उद्धारकर्ता का विशेष शिष्य मेरी अनंत साथी मैरी, उन्होंने सब कुछ दयालुता और प्रेम के पोषण में दिया है। उसके हाथ एक कोमल है, सहारा देने वाले स्पर्श को दर्शाते हैं। आज मैं उसके बिना यहाँ नहीं होता।
And be with her in eternal life. If you are suffering deeply,
यदि आप अकेले ही पीड़ित हैं, मैं आपसे निरोध करता हूं कि उद्धारकर्ता को आपकी देखरेख करने दें, उन्हें कंधे पर झुके और उनके आश्वासन को स्वीकार करें। मैं तुम्हारा अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। भाइयों और बहनों, यदि अपने पूर्ण रूप से नहीं किया तो और भी अधिक क्षमा, दया और प्रेम के मार्ग पर मुड़ें। हम उस युद्ध को त्याग दें जो स्वाभाविक मनुष्य के मन में अक्सर रोष लेता है, और मसीह के देखभाल, प्रेम और शांति को घोषित करें। यदि आप परमेश्वर की महिमा और अच्छाई ज्ञान के विषय में जान गए हैं, और वह बलिदान जो संसार की नींव से तैयार किया गया है, आपका मन एक दूसरे को कभी भी हानि पहुंचाने का नहीं होगा, परंतु शांति में रहेंगे। और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे वह परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करें और ये दूसरे के साथ लड़ झगड़ने, परंतु आप उन्हें एक दूसरे से प्रेम करना और एक दूसरे की सेवा करना सिखाएंगे। उद्धारकर्ता के सूली पर चढ़ने से कुछ पहले उन्होंने अपने प्रेरितों को सिखाया, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे रखा, और यदि तुम मुझे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं साक्षी देता हूँ कि उद्धारकर्ता की सच्ची अवस्था हमारे लिए थोर वदेशन की प्रतिमा क्राइस्ट अजज में धारण है। उनके हाथ निरंतर फैले हुए हैं, हम उन्हें प्रेम करके और एक दूसरे की सेवा और उनकी आज्ञाओं का पालन करके उनका अनुसरण करते हैं। मैं अपनी विशेष साक्षी देता हूं कि वे जीवित हैं और हम संपूर्ण प्रेम से प्रेम करते हैं। यह उनका गिरजा है। आज इस धरती पर थॉमस एस मॉन्सन उनके भविष्यवक्ता हैं। मेरी प्रार्थना है कि हम अपने स्वर्ग पिता, उनके पुत्र और भी अधिक प्रेम करें और कम भुगतें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।